कुछ भिक्षु गुजर रहे थे, जिसमें गौतम बुद्ध का शिष्य भी था आनंद। तो रास्ते में इतना सफर तय किया था कि चलते चलते उसको प्यास लगी, तो एक गांव से जब गुजर रहे थे तो उधर देखा कि एक स्त्री कुएं से पानी निकाल रही है। तो आनंद उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, कि आप मुझे पानी पिला सकते हैं। क्योंकि जो आनंद होता है वो राजकुमार होता है और बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन होता सन्यासी है। तो वो उस आनंद जब उस स्त्री से बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, तो वो स्त्री आनंद को देख के बहुत प्रभावित और आकर्षित हो जाती है उनको देखकर, और मन ही मन कुछ कल्पनाएं करने लगती है। तो वो बोल जब आनंद उससे पानी के लिए बोलते हैं तो वो पानी पिलाती है। आनंद पानी पीते हैं और वो मन ही मन संकल्प करती है कि क्यों ना इस भिक्षु को मैं अपने घर ले जाऊं और भोजन खिलाऊं। तो स्त्री उनसे कहती है कि क्या आप मेरे घर चलेंगे भोजन करने। तो भिक्षु है वो, तो उनका काम ही होता है कि किसी के घर भोजन करना। तो बोले क्यों नहीं, हम कर लेंगे आपके घर भोजन। तो वो उनके घर चले जाते हैं भोजन करने के लिए। तो भोजन करते हैं और वो उनके घर भोजन करते हैं और उस स्त्री को लगता है कि आज तो किया, फिर अगले दिन के लिए भी उनको इनवाइट करते कि कल भी आप आ जाना भोजन के लिए। बोले ठीक है, कहीं किसी और जगह न जाने से अच्छा है यहीं आ जाएंगे। तो वो जब इनवाइट करती है वो आनंद भोजन करके चले जाते हैं। अब वो स्त्री आकर्षित होने के कारण मन में षड्यंत्र बनाती, वो और उसकी माँ मिलके षड्यंत्र बनाती कि अगले दिन जब भोजन में आएंगे तो क्या खाने का। तो जब अगले दिन भोजन के लिए उनको बुलाया रहता है तो वो भोजन करने के लिए आते आनंद, और वो क्या करते हैं उसकी माँ और वो मिलके कि उस स्त्री को आनंद से शादी करनी रहती है। तो क्या करते हैं भोजन में कुछ ऐसे नशीले पदार्थ मिला देते हैं कि जिससे वो मूर्छित हो जाए और सारी शादी की तैयारी कर लेते हैं कि जैसा ही होगा तो हम शादी कर लेंगे, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता बाद में। तो ऐसा ही होता है, वो आते हैं भोजन के लिए, उनको भोजन खिलाते हैं और वो आनंद वहीं मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और एक स्त्री और उसकी माँ मिलकर शादी की सारी तैयारी कर लेते हैं। काफी समय हो जाता है तो गौतम बुद्ध को जो सारे भिक्षु आते हैं गांव में भोजन करने वो तो सारे वापस हो जाते हैं, सिर्फ एक आनंद ही रह जाता है। तो गौतम बुद्ध को लगता है कि आज क्यों लेट हो गए, सब तो आ गए। तो कुछ भिक्षु को फिर भेजते हैं और कुछ भिक्षु को पता होता है कि वो आज भी उसी घर गए हैं खाना भोजन करने जिस घर कल गए थे। तो वहां आते हैं तो देखते हैं कि वो आनंद मूर्छित पड़ा हुआ है और ये सब शादी की तैयारी चल रही है इधर में। तो तुरंत ही क्या करते हैं कि पानी लाते हैं और आनंद के ऊपर डालते हैं और उसको होश में लाते हैं। और जब आनंद होश में आता है तो देख के अचंभ हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो सारे सारा फिर उस स्त्री और उसकी माँ और सबको बुलाते हैं वो भिक्षु जो आए रहते हैं, बोले जो भी आप कर रहे हो वो ठीक है लेकिन पहले आप हमारे साथ चलिए, गौतम बुद्ध के पास चलिए, वो ही निर्णय करेंगे कि क्या करना है। तो स्त्री कहते हैं हमको इनसे प्रेम हो गया है, हम आकर्षित हैं और हम इन्हीं के साथ शादी करना चाहते हैं। तो बोले जो भी है इसका फैसला ये नहीं करेंगे और आप हमारे साथ चलिए। आनंद भी बोलता है कि आप चलिए, वो जो निर्णय करेंगे, अगर आपका प्यार सही है तो कोई हमें इतराज नहीं है और हमारे जो गुरु हैं जो वो हैं तो वो ही फैसला करेंगे। तो सब बुद्ध जी के पास जाते हैं तो बुद्ध जी पहले आनंद से पूछते हैं क्या तुमको इस स्त्री से प्रेम है। तो आनंद कहता है मुझे तो कोई प्रेम नहीं है। फिर उस स्त्री से बुद्ध जी पूछते हैं कि तुमको आनंद से प्रेम तो है, वो तो है, इसलिए तो उसको उससे प्रेम क्यों है तुमको। तो स्त्री जवाब देती है कि उनकी आंखें, उनका चेहरा और उनके जो तेज वो मुझे बहुत आकर्षित करता है और मुझे बहुत इसलिए प्रेम है कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे, इतने सुंदर राजकुमार था आनंद। तो जब बुद्ध जी ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं तुमको आनंद से प्रेम नहीं है, उसके शरीर से प्रेम है, उसकी आत्मा से प्रेम नहीं है। अगर उसकी आत्मा से तुमको प्रेम होता तो तुम विघ्न डालते ही नहीं, वो तो सन्यासी है। प्रेम मतलब जो दूसरे की भावनाओं की कदर करे। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि वासना की तृप्ति करें, वो प्रेम नहीं है, वो तो वासना है। तो इस बातें सुन के उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलती की और तुरंत वो आनंद के और आनंद से क्षमा मांगती है और गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिर जाती है। तो ये कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुमार जीवन में या कहो जब हम इस उस दुनिया के इस जीवन में आ जाते हैं तो कभी कभी ये नहीं होता कि हमेशा हम ही दूसरों पर आकर्षित हों। कभी कभी दूसरा भी आकर्षित हो सकता है और कभी कभी दूसरे को इतना आकर्षण हो जाता है कि अगर एक व्यक्ति नहीं भी है उसकी भावना कैसी गलत ना, और वो मना भी करता है तो दूसरा फिर षड्यंत्र भी रचने लगता है फंसाने के, जाल में फंसाने के, कि कैसे भी हम फंसा लें उस व्यक्ति को। तो जो टॉपिक है जो उस पे हम फोकस करेंगे तो इसी से मिलता जुलता है कि काम विकार पर फतेह। ये फतेह मतलब जीत, विजय, विक्ट्री, सक्सेस। और ब्राह्मण जीवन है ये सबसे बड़ा युद्ध तो उसी में है। तो इसकी कुछ बातें हैं, तीन बातों में तीन तीन बातें हैं जो हम देखेंगे कि जब अगर दुनिया में देखें तो जीत, व्यक्ति जीत कब पाता है, जीत कब पाता है। और तो कुछ एक बातें हैं जिसमें जीत के लिए और हार के लिए, जब पहले तो ये जानना चाहिए कि हार, जब व्यक्ति हार रहा है तो उसको ये भी पता हो कि हमारी हार हो रही है। क्योंकि जब इस ज्ञान में आते हैं तो एकदम से सबको पता नहीं चलता है कि पवित्रता क्या है। कभी कभी चलते चलते ये भी पता नहीं होता स्टार्टिंग में कि एक्चुअल में अपन तो सोचते हैं कि ये ज्ञान भगवान की प्राप्ति के लिए है, भगवान को जान लिया मतलब सब कुछ जान लिया, ये भी भ्रम हो जाता है चलते चलते वास्तविक में। और ये शुरू में तो ये बोल देते हैं कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, है ना, जैसे हो वैसे ही रहो, सिर्फ ज्ञान में चलने का। तो और लोग इंटरेस्टेड से जो हाँ कुछ छोड़ना ही नहीं है, ये भ्रम होता है एक, जो बहुत आगे जब ज्ञान में धीरे धीरे आएंगे ना तो तब पता चलता है। ऐसे स्टार्टिंग में यज्ञ की स्थापना जब शुरू हुई तो बाबा ने पहले नहीं बताया कि इसको जीतना है, विकारों को जीतना है, कुछ नहीं, बाबा खिलाता पिलाता था बस, इसने प्यार देता था, है ना, हाँ उंगली पकड़ते है बाबा, फिर बच्चे हाथ पकड़ लेते हैं, है ना, फिर माया किसी का गला पकड़ती है। तो इसमें तीन बातें, फतेह पाने के लिए तो पहले कुछ एक बार की बातें ये हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए, किसी भी चीज में पहले दृढ़ संकल्प चाहिए तब हम जीत पाते हैं। और पहले तो लक्ष्य स्पष्ट हो कि हम जीत के समय, और पहले हम कहते हैं दुनिया में कि शत्रु पे अगर विजय पानी है तो शत्रु पे आधी जीत जब हो जाती है तब हम उसके बारे में जान लेते हैं। शत्रु के बारे में जानकारी होना ही आधी विजय है। तो तीन दृढ़ प्रतिज्ञा वो तो अलग है, तीन बातें हमारी बिल्कुल, उन बातों पे बिल्कुल सावधानी बरतनी है। तो मित्र, चित्र, चरित्र, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। अगर हमारे मित्र, हमारा सब कुछ ठीक है शुरू से, मतलब कुछ भी अंदर भावना गड़बड़ नहीं, लेकिन अगर मित्र ऐसे पकड़ लिए हमने जो पहले से ही इन क्षेत्रों में हैं या पहले से फंसे हुए हैं और हमारा ठीक है, हमारा कुछ नहीं है, तो ऐसे ही बचपन में तो बड़ा सुंदर लक्ष्य था जब कुछ नहीं था, छोटे थे, कि जीवन में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, गरीबों की मदद करेंगे और जीवन अच्छा, कोई आगे का कोई वो नहीं है, लोगों के कुछ और लक्ष्य होते हैं, तो ऐसा था कि मदद करनी है बस। जैसे उम्र बढ़ी, लोगों के संपर्क में आए, दोस्त यार बड़े मिले, तो कईयों से चक्कर था, तो पहले उस समय मोबाइल फोन नहीं चलता था, तो क्या करते थे कि जिस एरिया में लौकिक में रहते थे जहां हम, जो आसपास मित्र थे जो हमारे, तो उतने ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं होते थे और हम थोड़ा हैंडराइटिंग भी सही थी और थोड़ा पढ़ने में भी थोड़ा सही साथ थे कि समझ में आ जाता था। तो उनके जो लव लेटर आते थे तो वो हमसे पढ़ाते थे और किसी को अगर भेजना है तो हमसे लिखवाते थे। तो ये सिलसिला चल लोगों के, तो ये उस समय तो छोटे थे, कुछ ये नहीं था, उनने जैसा उधर से आया पढ़ के सुना दिया, कुछ चीजें अपन को समझ भी नहीं आती थी, तो कोई वैसा नहीं था, है ना। लेकिन जो माता जी थी वो समझती थी कि क्या करता रहता है, तो हमेशा परहेज करती थी और नजर रखती थी पैनी किसके साथ रहता है। तो रिप्लाई भी करते थे। तो काफी समय गुजर गया, कुछ वर्ष, ऐसे दोस्त थे वो कि लव लेटर भी पढ़ाते थे और लिखवाते भी थे। तो लिखते लिखते बहुत सारे, मतलब मन में बहुत सारे आइडियाज आ गए कि कैसे किसको इम्प्रेस करना है, है ना, और क्या मेल फीमेल की क्या भावनाएं होती हैं, है ना, क्या चीजें हैं। तो उस समय क्या है कि ग्रुप में ऐसा हो गया कि सब लोग लव गुरु के नाम से मतलब वो करने लगे कि तुम गुरु हो। कुछ हम कुछ तो जान ना, हम कुछ किए ना कुछ जान रहे, सिर्फ लोग उधर से जो पढ़ते थे उसकी भावना के अनुसार और जो रिप्लाई करते थे उसके अनुसार बहुत सारे आइडिया आ गए थे, जो लोग कुछ राय सलाह लेने लगे। अपना तो कुछ है ही नहीं था, वो गुरु बना दिया। धीरे धीरे चलते चलते सारी चीजें, और गांव में जो ब्राह्मण जीवन में आने में कुछ जो अपने पुराने जो लौकिक में कहो या जो कुछ अच्छे संस्कार भी होते हैं, कभी कभी हम ब्राह्मण बनने के बाद उन संस्कारों का दमन कर देते हैं, है ना। श्रीमत में मन मत मिक्स करके बाबा कहता है ना, भक्ति को छुड़ाओ नहीं जब तक कोई ज्ञान में नहीं आए। कभी कभी ऐसा कह देते हैं लोग कि नहीं वो सब छोड़ना पड़ेगा फिर आओ। बाबा क्या करता है, पहले हम बाबा के पास आ जाते हैं फिर धीरे धीरे चीजें छोड़ना शुरू करते हैं ना, है ना। जब जोड़ते हैं तो वो छूटना ऑटोमेटिक हो जाता है शुरू। तो बचपन से लौकिक में एक वो था नियम कि कोई भी कुमार रहते हैं जो मतलब, और वो कोई भी घर में कोई संबंधी या कोई भी बाहर का भी व्यक्ति हो, चाहे संबंधी हो चाहे ना हो, अगर कोई कुमारी है अनमैरिड तो उसके पैर छूना पड़ता था। ये लौकिक में हमारे नियम था, चाहे बड़ी हो चाहे छोटे हो। और अगर लड़का छोटा है तो कुमारी चाहे उससे भी छोटी हो एज में, उसको पैर छूने का रहता है, ये नियम है पक्का। और पहले ऐसे हाथ करके नहीं छूते थे, पहले हमारे इधर लॉकिंग में था कि सिर लगाना पैर में, हाँ साष्टांग प्रणाम करना है, बिल्कुल पैर मतलब सिर माथे से लगना चाहिए। तो धीरे धीरे जो लोगों का जो कल्चर बदलता गया तो सारी चीजें बदलती गईं, फिर पैर छूना झुकना शुरू किया, पैर टच करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे पैर छोड़ो थोड़ा ऊपर ऊपर ही से टच बाहर बिना ही उसके टच करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे और बदला और व्यक्ति में इतना परिवर्तन हो गया कि जितनी पढ़ लिख गया तो झुकने को वो समझने लगा कि झुके क्यों, तो वो सारा कल्चर बदल गया, वो तो अलग बात है। तो बचपन से देखा कि कभी कोई बेकारी और कोई वैसा लक्ष्य नहीं था दुनिया में जाने का, और कोई बाबा को भी नहीं अच्छे से पहचाना था, सिर्फ बचपन से यही था कि संग दोस्त से तो बहुत परहेज करी, क्योंकि माता जी ज्ञान में थी तो उनको पता था कि कैसे बचाने का रखने का। संग के लिए जिस माहौल में हम रहते थे उधर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि नशा ना करता हो, मतलब जिस माहौल में थे तो उधर पे एक तरफ बहुत बहुत मतलब थर्ड क्वालिटी के लोग भी रहते थे और बहुत उच्च क्वालिटी के लोग भी रहते थे, दोनों तरफ, और बीच में हम रहते थे। मतलब दोनों तरफ दोनों का जीवन देखा, एक रॉयल फैमिली वालों का भी जीवन देखते थे और एक जो बिल्कुल बदतर से बदतर लोग हैं उनका जीवन भी देखा बहुत नजदीक से। लेकिन जो माताजी की जो धारणाएं थी, जो उनका जो ज्ञान था, वो इतना मजबूत था कि किसी में आकर्षित नहीं हो पाए हम लोग, न इस तरफ न उस तरफ। जब तक उधर थे तो सुरक्षित थे। धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, जब हम कोई चीज अपने बड़ों से छुपाना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर बुराइयां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और जब हम हैं कुछ और दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर बुराइयां शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए बेकार तो ऐसा नहीं है कि इस जीवन में मतलब बाबा कहो या जो भी कहो, कि जैसे एक बच्चा होता है ना, वो खेलते खेलते बार बार गैस की तरफ, आग जल रही उधर हाथ डालने की कोशिश करता है, नादान बालक छोटा हाथ डालने की कोशिश करता है, तो माँ बार बार उसको हटाती है, बार बार हटाती है, लेकिन वो नहीं मानता, बार बार वहीं जाता है, उसी को उंगली करेगा जिस चीज के लिए मना किया जाएगा। तो एक बार माँ प्लान बनाती है कि बच्चा डाल है ना, उसको डालने दो हाथ, और धीरे धीरे क्या करती है, आग के पास हाथ ले जाती है, और जब आग की उसको वो बच्चे को ना सेंक लगती है ना, तो और पास ले जाती है, और बिल्कुल बिल्कुल जलने वाला है अब हाथ, लेकिन वो बच्चे को महसूस होता है कि ये तो जल जाएगा हाथ, और वो वापस खींच लेती है माँ। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि बिल्कुल डूबने वाली थी नाव के, भगवान उसी माँ की तरह गलतियां तो बार बार कर रहे थे, क्योंकि जब इस ज्ञान में आए तभी बहुत गलतियां भी पहले तो हो चुकी थी और होने वाली थी, लेकिन बाबा ऐसी माँ है, वो उसने ऐसे सेंक दी कि वो समझ में आ गया। पहले तो वो मुरली में शिक्षा दे रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि गड़बड़ है, लेकिन जब हाथ जलने वाला था तो उसने खींच लिया और तब एहसास हुआ कि हाँ ये गड़बड़ है। तो वो तो बहुत अलग बात है, पहले अपन थे मित्र में, पहली बात मित्र हमारे अगर अच्छे होते हैं, अगर कोई बुरा व्यक्ति ना अच्छे की संगत कर ले तो अच्छा हो जाता है, और कोई अच्छा अगर बुरे की संगत कर ले तो बुरा भी हो जाता है। तो बुराइयां बहुत जल्दी इफेक्ट कर लेती हैं। तो मित्र हमारे कैसे होने चाहिए, और हम जिन लोगों के इर्द गिर्द हैं उनकी परख भी होनी चाहिए। तो ऐसा तो बहुत हुआ कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी रहे हुए हैं जो जिनके मुख से कभी गाली के अलावा कुछ नहीं होता था, नशे हर प्रकार के थे लोगों के बीच, लेकिन बचपन से ऐसा कुछ संस्कार अंदर आ गए थे कि सारे लोगों के बीच रखे लेकिन उनका असर नहीं पड़ा। ये भगवान का ही कहो मदद थी तो उसका धन्यवाद सांस से सांस निकलता है, लेकिन गलतियां भी बहुत की, बाबा को जानने के बाद भी बहुत गलतियां की, जिन गलतियों के कारण ही कभी एक ऐसा समय आया कि डिप्रेशन में भी हो गए थे। एक तो डिप्रेशन शब्द बहुत लेट सुना, और जब सुना तो उसके बाद डिप्रेशन हो गया है ना, तो वो अलग बात है। तो मित्र हमारे कैसे होने चाहिए, वही मित्र से ही हम उन्नति कर सकते हैं। दूसरा है चित्र। चित्र की बात कहो तो चित्र तो घातक होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सुन के उतना हमारे अंदर जीवन में वो नहीं होते परिवर्तन, लेकिन कभी कभी ऐसे दृश्य देख लेते हैं जिसके कारण कर्म ही बदल जाते हैं, कर्म बदल जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। चित्र बहुत स्मृति पटल में बहुत गहरे छाप छोड़ते हैं। तो हमने चित्र तो क्या, जो दुनिया में आजकल चित्र की माया है ना, वो सबसे बड़ा है सिनेमा, सिन की माँ कहते हैं। सिनेमा बहुत घातक है युवाओं को, तो आजकल सिनेमा ही ने डुबा दिया। तो पहले ये सब चीजें नहीं जानते थे कि ये क्या है दुनिया में, तो फिल्म देखने की बड़ी आदत पड़ गई थी, इतनी आदत पड़ गई थी कि बड़ा घाटा हो गया। गांव में तो ये सब चीजें नहीं होती थी जो फैशन शहरों में होता था, तो नॉर्मल जीवन था तब तो। लेकिन जब ये कंप्यूटर और मोबाइल आए तो तब से थोड़ा बदलाव होने लगा। तो चित्र फिल्म में एक दिन में हमने तकरीबन 6-6 फिल्म देखी। रिकॉर्ड तो इतने टोट डाले कि ना देखी हो तो कम से कम, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे तो कहां से पैसे लाके और कैसे कैसे करके डीवीडी खरीदते थे उस समय, है ना। तो करीबन हमारे पास 1000 डीवीडी थी, 6-7 हजार, मतलब 10 हजार हमने उस टाइप फिल्म देखे होंगे, है ना उस समय। तो इतना हॉलीवुड ले, टॉलीवुड ले, बॉलीवुड ले, सारे बोर्ड देखे। अब ये गॉडलीवुड में आए तो समझ में आया कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो कहते हैं ना, दूध का जला फिर छाछी फूंक फूंक के पीता है, तो वो बात अलग है। लेकिन जब व्यक्ति दूसरे के अनुभव से बहुत कम सीखता है, लेकिन जब खुद ठोकर खाता है तो समझ में आ जाता है। तो हमारे चित्र भी कैसे होने चाहिए, वो भी हमारे अंदर प्रभाव डालते हैं। और देखा जाए तो दूसरे व्यक्तियों से हमारे अंदर प्रभाव बहुत कम हुआ, जो फिल्म देख के बहुत परिवर्तन हुआ और बहुत ख्यालात और संकल्पों में परिवर्तन आ गया। काफी लंबे समय तक इसमें छोड़ने का संघर्ष चला, लेकिन बाबा देखो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी हम हिम्मत हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं कि तो संस्कार छूटते ही नहीं है, और हम संस्कार को छोड़ने की वजह फिर वो रास्ते छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ो क्या होता है। बल्कि हार न मानना ही एक जीत का विशेष गुण है। भले आपने कितनी भी गलतियां की हो, कितने भी बार आपने हारा हो, एल्वा एडिसन को हमेशा एक एग्जाम्पल के लिए हमेशा याद किया जाता है, उनकी इन्वेंशन को ही नहीं याद करता ज्यादा। उनने फेल होके इन्वेंशन की, इसलिए उनको ज्यादा याद किया जाता है। और भी बहुत साइंटिस्ट हुए जो एक ही बार में पास हो गए सक्सेस, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। जो फेल होके पास हुआ है उसी को व्यक्ति जानता है। और वास्तव में 100 लोग अगर एक व्यक्ति को मारे तो उन 100 लोगों को कोई नहीं जानेगा, लेकिन एक व्यक्ति 100 लोगों को अगर खत्म कर दे तो वो व्यक्ति विशेष होता है। जैसे अभिमन्यु का शास्त्रों में गायन है, अभिमन्यु को इसलिए पूछा जाता है क्योंकि युद्ध करते करते ही वो भले मर गया, वो जीत नहीं पाया, लेकिन नाम उसका ज्यादा है ना। तो हिम्मत रखनी चाहिए। और हमारे चित्र सात्विक हो, ब्राह्मण बनने के बाद, क्योंकि चित्र और ज्यादा घातक रूप से प्रवेश करते हैं, उतना जब हमको ज्ञान नहीं रहता ना तो उतना हमको उसमें डिस्टरबेंस नहीं होता। लेकिन ज्ञान आने के बाद अगर कोई ऐसे वैसे चित्र देख लिए तो वो हमारे अंदर बहुत घातक प्रवेश कर देते हैं। और पूरा पता चला, कोई अच्छी क्लिप भी देख रहा वीडियो, और उसमें अचानक कोई ऐसा ऐड आ गया तो आप सारी चीजें, अच्छी चीजें भूल जाओगे, वो क्लिप हमेशा याद रहेगी। और आजकल तो सबसे बड़ी माया यही है YouTube, और YouTube में भी ब्राह्मणों के लिए और बड़ी माया बन गई है कि YouTube में चैनल बनाना। हर एक ब्राह्मण अपना चैनल बना लिया, और चैनल बनाने का उद्देश्य ज्ञान किसी को देने का नहीं है, उससे अर्निंग करने का है। ब्राह्मण बनने के बाद भी अभी सूक्ष्म में कहीं ना कहीं लोभ जागृत हो जाता है चलते चलते। हम लोगों को अच्छे अच्छे क्लास डाल रहे हैं, बहुत अच्छा है, YouTube में सेवा हो रही है। सेवा करते करते क्या है, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं बहुत सारे, जिसके कारण YouTube ऑफर करता है कि आप ऐड कर लीजिए अपने चैनल में, जिससे आपकी अर्निंग भी होगी और आपके इतने सब्सक्राइबर हैं वो देखेंगे। वास्तव में हम क्लास क्यों डाल रहे हैं यूट्यूब में, ताकि लोगों में परिवर्तन हो, लोगों में जागृति आए, प्योरिटी बढ़े, लोगों में परिवर्तन हो। और फिर हम ऐड उसमें इसलिए ऐड कर देते हैं कि ताकि हम अर्निंग करें, पैसे कमाएं। पैसे भी शुद्ध संकल्प होता है पहले कि वो पैसा आएगा वो सेवा में ही यूज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो पैसा भी कैसा, किस चीज से आ रहा है, कौन सी एड आपकी, आपने बहुत अच्छी एक घंटे की क्लास डाली यूट्यूब में, ठीक है क्लास अच्छी डाली, लेकिन धोखे से एड भी ऐसा वैसा चल गया उस क्लास में, तो जो सुनने वाला देखने वाला है ना वो क्लास याद नहीं करेगा, वो चीज वो एड उसको घुस जाएगी। कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो जाते नहीं हैं यूट्यूब में, कभी घुसते ही नहीं है, लेकिन कोई अच्छा क्लास सुनने के लिए जाते हैं वो, ठीक है। अब कोई ब्राह्मण अच्छी क्लास सुनने के लिए गया, देख रहा है वो, अब उस चैनल में उस वीडियो में ऐसा कोई ऐड आ गया जो देख लिया उसने, दूसरे का थोड़े स्वयं में बहुत वृत्तियों में परिवर्तन तुरंत हो जाएगा, आप पूरी क्लास आप वो भूल जाओगे और वो स्मृति में छप जाएगा, क्योंकि सफेद कागज में काला दाग उभरा हुआ दिखता है। वैसे ही हमने बहुत अच्छी एक घंटे सुन ली, लेकिन एक सेकंड भी घातक होता है। कुमार और पवित्र इस जीवन में चलने में सावधानी ही सुरक्षा है। आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ो ना बढ़ो ठीक है वो अलग मैटर है, लेकिन आप अगर सावधानी घटी और दुर्घटना हो नहीं है, ये मार्ग ऐसा है कि एक दो बिल्डिंग है एक बीच में रस्ती है, आपने आगे बढ़ो चाहे ना बढ़ो जितनी मंजिल पे लेकिन पहुंच गए हो, अगर उधर भी स्थिर अगर एक पैर भी इधर उधर हुआ तो मौत निश्चित है। तो ऐसे ही है इसमें, कभी कभी घातक ऐसा हो जाता है कि कभी हम किसी से राय सलाह भी ले लेते हैं ना तो वो भी घातक हो जाती कभी। है कभी ऐसे ही शुरू में अपना बताया कि देखो ज्ञान में चलते चलते हर एक ब्राह्मण से उमंग उत्साह से शुरू में नशा रहता है, हर किसी को अपन समझते हैं बाप समान है, वो भी भ्रम होता है ना। तो किसी को हमने बताया कि ऐसा है कि फिल्म देखने की आदत है और कि कैसे छोड़े क्या है, इस जीवन में तो आ गए हैं लेकिन इधर तो ये बाबा कहता है भाई इसको नहीं देखना है, तो ये तो आदत है और ये। तो उसने कहा कि तुम तो बड़े भयंकर ज्ञानी निकले, बोले छोड़ दो ज्ञान तो आना नहीं दोबारा सेंटर। ऐसा एक व्यक्ति से ये ठीक है, दूसरे से राय सलाह ली तो बोले चलता है, दूसरे ने बोला चलता है हम भी देखते हैं, तुम तो ऐसे ऐसे हम तो भयानक भयानक देख लेते हैं, लेकिन योग में पावर है अपने, अपने योग में पावर है, ऐसा थोड़ी है योगी है। तो जितने लोगों से अगर राय सलाह लोगे तो अलग अलग वैरायटी से आपको मिलेंगे, इसलिए जो है ना विजय के लिए किसी भी चीज में जीत के लिए, और वास्तव में ब्राह्मण बनने के बाद बाबा पे सच्चाई सफाई होनी चाहिए बाबा से। आप में लाख बुराइयां हैं, एक लाख बुराई भी है, और अगर आपके पास सच्चाई है भगवान के प्रति आप आज्ञाकारी हो तो वो बुराइयां भी ठीक हो जाएंगी। तो बात तो बहुत हो जाती है, ठीक है। अगला है तीसरा चरित्र। अगर हमारे पास दो मार्ग हैं, एक मार्ग है कि मौत और दूसरा है कि चरित्रहीनता, तो मौत को स्वीकार कर लेना, जीवन चला जाए लेकिन चरित्र नहीं जानना चाहिए। बाबा ऐसे ही चलते चलते बहुत पहले भी सुनाया था कि ज्ञान में एंट्री होते होते ना, ज्ञान में जैसे ही हम एंट्री करते तो माया भी एंटर हो जाती है, उस समय आप हमको नहीं लगेगा नशे में रहते हैं, बाबा मिल गया बहुत नशे में रहेंगे, लेकिन साथ में माया भी एंटर होती है। चलते चलते ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई जो एक चीज में फंस गए हम, कि पहले तो उतना फिल्मों का इफेक्ट नहीं था, लेकिन जब ज्ञान में आए जिसे बाबा कहता है अमृत वेला उठना है, जब अमृत वेला सोचे उठने की, लेकिन पुरानी ऐसे संस्कार हो गए फिल्म देखने की, रात को फिल्म जब तक पूरी ना देख लें तब तक नींद नहीं आती थी ना, जहर सी बात है। और बाबा ने 16/11/95 की मुरली में बोला है कि जिस अवस्था में आप सो रहे हो अगर बुद्धि को खाली करके नहीं सोओगे तो आप स्वप्न में भी आपकी पवित्रता खत्म हो जाएगी। और आप उठ भी जाओगे जबरदस्ती तो डोलते रहोगे, निंद्रा लोक में रहोगे आधे, है ना। बाबा से योग नहीं लग सकता, और बुद्धि को खाली करके नहीं सोया तो गया तुम्हारा। तो ये सब चीजें जब ज्ञान में चलते चलते फिर बढ़ती गई, वो जो कमी है अपनी वो बहुत घातक होती गई बीमारी। घातक मतलब कि उसी में माइंड गड़बड़ होने लगा। अब किसको सुनाए, सुनाए किसी से, राय सलाह किससे लें, हम तो डूबे हैं सर, हम साथ में तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसी सलाह है। तो फिर क्या हुआ कि बड़ा वो हो गई, तो बाबा से बोला कि ऐसा ऐसा, बाबा चलते रहे उसको छोड़ने का नहीं। तो अंत में जीत सत्य की ही होती है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। तो चरित्र नहीं जाना चाहिए ये याद रखने का, बस बाबा ने यही कहा, यही समझ में आया कि चले कुछ भी चला जाए। तो नोट लिख दिया कि देखो अब कुछ गलतियां हुई, गड़बड़ हुई। तो बाबा आज तक कोई ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया होगा कि ब्राह्मण बनने के बाद किसी के मन में सुसाइड करने का ख्याल आ जाए, लेकिन ये ख्याल संकल्प आने लगा कि देखो भगवान के मार्ग में चलने पे और अभी भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है तो क्या मतलब। और इसके एक और कहानी सुनी के तब समझ में आया, कोर्स क्लियर हुआ कि एक बार गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को, भिक्षु जो थे उसके, उनको भेजा कि जाओ भिक्षा मांग के लाओ। तो एक राजकुमार था, वो भिक्षु बन गया था, तो वो एक श्राविका के पास जाता है ना, जाता है भिक्षा मांगने। तो रास्ते में संकल्प करता है कि ये जीवन कब तक चलेगा ऐसा, राजकुमार थे तो बढ़िया अच्छा खाना खाते थे, अब ये इधर क्या है। मन में संकल्प आया उसको, गया वो श्राविका के दरवाजे खटखटाया और अंदर संकल्प चल रहा था। तो जैसे ही भोजन के लिए वो बैठा, भोजन आया उसकी पसंद का आया, वो सोच रहा था जो जैसा भोजन वैसा आ गया, और वैसा आ गया तो उसको अचंभा हुआ कि मैंने जैसा सोचा वैसा हो गया। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मुझे थोड़ा भोजन खाने के बाद रेस्ट की जरूरत पड़ती, क्यों ना मैं रुक जाऊं। तो उसने, श्राविका ने बोला कि आप थक गए होंगे तो आप यहीं रुक जाइए। बोले ये तो कैसे हो गया, मेरे संकल्प कैसे पहुंच रहे, है ना, संकल्प कैसे पहुंच रहे। तो एक बार घटना घटती तो नॉर्मल लगती, दूसरी बार घटती तो थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, तीसरी बार घटना घटे तो थोड़ा फिर हड़बड़ा जाता है व्यक्ति। तो तीसरा क्या सोचा कि कल के लिए भी मुझे निमंत्रण इधर ही मिल जाए तो कितना अच्छा ना हो। तो श्राविका ने निमंत्रण भी दे दिया कि आप कल फिर आ जाइएगा ना। तो उसके अंदर घबरा गया वो कि आखिर मेरे संकल्प कैसे उस तक पहुंच रहे, घबरा के और गया वापस, गया गौतम बुद्ध जी को ये बताई बातें कि हम जो संकल्प कर रहे थे वो उस तक पहुंच रहे थे। तो बुद्ध जी ने कहा कि, और उसने कहा कि कल फिर तुमको उसी घर जाना है, बुद्ध ने कहा। तो क्या करता है कि बोले मैं नहीं जाऊंगा उस घर, उधर हमारे मन की बात पढ़ ली। तो बोले तो क्यों नहीं जाना, बोले हमारे अंदर वासना के भी संकल्प उत्पन्न हुए, तो जरूर उसने उन्हें वो भी पढ़ लिए। बोले जब तक, बुद्ध ने कहा अब जब तक तुम उस घर ही में नहीं जाओगे तब तक हम तुमको इधर घुसने नहीं देंगे अंदर, तुमको वहीं जाना है, दिल्ली जाना है, जब तक हम ना बोले मना ना करें तब तक उधर ही जाने का। तो आदेश था बुद्ध का, अगले दिन गया वो। लेकिन अब स्मृति क्या थी उसकी, जागृत था, मन को देखते हुए गया, अगली बार गया और खा के भी आया, कोई संकल्प नहीं चलाया और वापस आए। तो हमारे अंदर भी, हमें भी क्या जागृत कैसे रहेंगे। बाबा कहता ना मैं तुम्हारे संकल्पों को नहीं पढ़ता, तो हमारा भ्रम हो जाता है कभी कभी वास्तव के में हम अकेले में क्या सोच रहे हैं। तब हम, बाबा कहता ना साक्षी भाव, तब हमें अकेले जब हम रहते हैं तो तब हमें देखना है कि कोई हमारे संकल्प पढ़ रहा है। और बाबा ने कहा किसी मुरली में, बाबा ने अव्यक्त मुरली में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं ऐसे वैसे बच्चों को थोड़ी दुनिया के सामने एग्जाम्पल रख दूंगा, वास्तव में आप जब अकेले रहते हो तो तब आप सोचो कि इस समय अगर मुझे दुनिया देख रही तो मैं क्या करूंगा। दुनिया के सामने अगर मैं स्टेज में हूं इस समय अकेले में तो मैं क्या सोचूंगा, और मेरे जो विचार हैं वो स्क्रीन में दिख रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं, तो क्या सोचेंगे, जागृत रहेंगे। तो ऐसा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला था मित्र चित्र चरित्र तीनों होंगे पवित्र, तब तीन चीजें होंगी। तीन चीजें जो होगी पवित्र तब तीन चीजें होंगी। वो तीन चीजें होंगी कि तीन पेपर हमको पास करने हैं, दो पेपर पास करेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला पेपर आता है, सबका कॉमन है, हर ब्राह्मण का कॉमन पेपर है। जो अभी कोरोना देख लो तो ये कॉमन पेपर है हर पूरी दुनिया के लिए, हर एक आत्मा के लिए। पहला ये कॉमन पेपर। दूसरा होता है इंडिविजुअल पेपर, जो आंतरिक अपने अंदर दबी हुई कमजोर संस्कार हैं वो खुद पेपर के रूप में आते हैं। पहला परिस्थिति है, लौकिक से जो भी है, अलौकिक परिवार से परिस्थिति आती है, विघ्न बाधा आते हैं, जो इंडिविजुअल पेपर, हर किसी का अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग पेपर चल रहे हैं, हर एक अलग अलग कमजोरी है, कमी है सबके अंदर, वो अपने अंदर काम कर रहे हैं। तो पहला ये पेपर भी पास करना है, ठीक है, तीन पेपर। और ये दो पेपर जब पास हो जाएंगे, तीसरा हमारा है फाइनल पेपर। कौन सा है फाइनल पेपर? वो फाइनल पेपर कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा फाइनल पेपर सबका अलग अलग होगा, जिसके अंदर जो कमी है ना वही फाइनल पेपर है उसका। तो ये तीन चीजें हैं, तीन चीजें सही रहेंगी तो तीन चीजें हो जाएंगी। और तीन चीज जो छह चीजें सही करने के लिए तीन चीजों में एक्यूरेट होना है, तीन चीजों में बाबा के वफादार होके चलना है, तीन चीजों में श्रीमत प्रमाण चलना है। तो पहली है आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार, तीनों बातें हैं, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार। और ये तीन चीजें रहेंगी कि तो दुनिया की आपको कोई ताकत नहीं हिला सकती, चाहे कितने विघ्न तूफान आए, चाहे कितने भी आप बाल बस बचा रहा हो दुनिया में डूबने लायक, तो भी भगवान निकाल के तुमको पकड़ के ले आएगा। तो पहले कभी कभी लगता था जब इधर सुना कि शब्द अलग हैं तो अर्थ भी अलग होंगे हर चीज के, तो पहले किसी से हमने पूछ लिया मन मना भाव मामे का मध्य जीवों में क्या अंतर है, तो बोले कुछ नहीं, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना, तीनों का ये एक मतलब है, चटनी बना दी चाट का। तो फिर संकल्प आया श्रीमत और फरमान में क्या मतलब है, श्रीमत और फरमान में क्या है, तो बोला वही है श्रीमत को फॉलो करो, है ना। तो श्रीमत का क्या मतलब है, फरमान का क्या मतलब है, तो जब पता चला कि श्रीमत माना बाबा ने ज्ञान दे दिया, करना न करना आपके हाथ, लेकिन फरमान का ये मतलब नहीं होता। फरमान मतलब फरमान, एक राजा ने एक व्यक्ति को बुलाने के लिए पहले दूत भेजा कि जाओ उसको बुला के लेके आओ, तो वो खेत में काम कर रहा था, बोले ठीक है मैं देखता हूँ आता हूँ जब टाइम मिलेगा, वापस चला गया दूत, वापस चला गया, वो राजा से बोला कि वो नहीं आ रहा है। दूसरी बार राजा ने फरमान जारी किया, फरमान के साथ जाओ और उसको उठा के लेके आओ, और वो सैनिक जाते हैं और फरमान है राजा का, अब तो उसको आनी पड़ेगा, तो आ जाता है। ऐसा ही हमारे जीवन में है, बाबा ने तो श्रीमत दे दी, लेकिन तो हम अपने अनुसार चलते रहते, लेकिन बाबा कहता है फरमान है तो क्या करना है। बाबा ने विकार काम विकार के लिए तो फरमान ही जारी करे हैं, काम जीत जगत जीत। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, तो देखो कुमार जीवन में भी बड़े कभी कभी हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं लेकिन दूसरा आगे एक्सीडेंट कर देता है, तो वो भी अलग एक अनुभव है कि समय तो नहीं है, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत कभी कभी टॉपिक मिल जाता है ना, तो जो सारी पुरानी रहती है ना। और बाबा के ज्ञान में एक चीज और अनुभव की है, बाबा हमारा फ्यूचर तो बदलता है, प्रेजेंट बदलता है, पास्ट का जीवन भी बदल देता है। ऐसा ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं। पास्ट की जो हमारी स्मृतियां हैं, पास्ट में जो बीते, जो दुख के संकट के जो चीजें बीती, उसको भी शक्तिशाली और खुशनुमा बना देता है। कि पुराने जो अनुभव हैं आज भूल पा रहे हैं, शायद उस माहौल में जब थे तो हम डरते थे, भय था, कोई वो नहीं थे। वो ज्ञान में देखो कितना निर्भय बना देता है, फिर भय ही नहीं है कि क्या लोग क्या सोचेंगे, अरे मुर्दा मर गया है ना, मर गया व्यक्ति, अब क्या सोचेंगे लोग, सोचेंगे तो शरीर के बारे में सोचेंगे, आत्मा तो फरमान है बाप का। और बाबा से नहीं भी हो रहा तो बाबा से अगर सच्चाई सफाई है तो सब ठीक हो जाएगा, तो फरमान है। फिर आज्ञाकारी है, बाबा ने आज्ञा दी है कि बच्चे ऐसा ऐसा करो, तो क्यों नहीं मान लेते आसानी से। दूसरा है वफादार। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम तो कहते हैं कोई कुत्ते की तरह से वफादार रहो, फिर सारा मालिक करेगा। एक कुत्ता बोलता है आवारे टाइप का, तो उसको कोई भी मार के भगाता रहता है। और एक होता है वफादार, जिसको घर में लोग रखते हैं, पट्टे से भले बांध के रखेंगे, तो इधर श्रीमत का पट्टा है हमारे गले में, तुम्हारी सारी केयर कौन करेगा, मालिक करेगा। मालिक कौन है, बाबा। एक पिता बच्चे के साथ पतंग उड़ा रहा था, तो पतंग उड़ाते उड़ाते क्या हुआ कि धागा खत्म हो गया, तो बच्चे ने कहा कि अगर हम इसको काट देना तो पतंग बहुत ऊपर जाएगी, तो पिताजी ने शिक्षा देने के लिए काट दिया। बच्चे ने देखा कि कुछ देर तक पतंग तो बहुत ऊपर जा रही है और खुश हो रहा, ताली बजा रहा है, अरे पतंग ऊपर जा रही है। फिर धीरे से देखा कि पतंग नीचे जाना शुरू हो गई और एक समय आया कि नीचे गिर गई। तब पिता ने बताया कि बच्चे जब तक डोर हमारी किसी के हाथ में है ना, तो ऊपर जाएगी पतंग और नीचे नहीं आ सकते, और अगर हमने डोर छोड़ी तो उसका गिरना निश्चित है। ऐसे श्रीमत हमारी वो डोरी है, निमित्त बनना सेवा में, सेवा में कोई एक सेवा में आप पकड़ लो, जहां भी हो आप, जब भी हम गृहस्थ में रह रहे या कहीं भी रह रहे, अगर एक चीज आपने अच्छे से पकड़ ली भगवान की आज्ञा की, कोई भी चीज चाहे सेवा में, श्रीमत में, कोई भी एक चीज ऐसी पकड़ लो, आप में लाखों बुराइयां हो वो सारी छूट जाएंगी और आपको इतनी ऊंची उड़ान कि हमने सोचा भी नहीं होगा कि कहां से कहां पहुंचा दे। भगवान का प्लानिंग किसी को नहीं पता है, आप जितना सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा परे है। वो कभी कभी हमारी सोच ना इर्द गिर्द ही रहती है, एक दायरा रहता है, लिमिटेशन, और हमें बहुत आगे की चीजें नहीं दिखाई देती। लेकिन जितनी चीजें समझ में आए उतनी करना शुरू कर दो, आगे की स्पष्ट हो जाएंगे। तो ये होता है आज्ञाकारी, मतलब गुरु की जब आज्ञा मिले तो सब कुछ गुवाने पर, चाहे लौकिक हो चाहे कुछ भी हो, बाबा ने जहां भेजा जैसे भेजा श्रीमत दी वैसे करने का। बहुत सारे कुमारों का, खुद का भी हमारे अनुभव है कि कई कुमार पूछेंगे सेंटर में रहूं, घर में रहूं, इधर नौकरी करूं, वो करूं, जे करूं, मधुबन में रहूं, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और इससे उससे इससे इतने पूछते पूछते इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर कुछ नहीं होता, ड्रॉप हो जाता है। तो उसका एक ही उपाय है, एक कुमार का था कि पूछा था ऐसे ही, बहुत डिप्रेशन में था वो इधर ही, तो घर वाले उसको बुला रहे, उसकी इच्छा है इधर मतलब रहने की, कि इससे बात कुछ दिन और करूंगा मैं। और बोले घर वालों से बहुत प्रेम है, घर वाले हमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना, ये बोल रहा था वो। तो हमने कहा ठीक है, एक बार तुम एक ट्रिक आजमा लो कि वो तुमको इधर नहीं रहने दे रहे ना, घर बुला रहे, तो पूछो उनसे कि क्यों बुला रहे हैं। बोले इधर पर रहोगे ना तो सबके साथ रहोगे तो तुम्हारी देखभाल होगी, अच्छा होगा, सब कुछ होगा, है ना, और जैसे भी रहोगे जिस भी स्थिति में सही रहोगे। तो हमने कहा कि एक बार तुम घर वालों को बोल दो कि हमारा जो आर्मी में है सिलेक्शन हो गया, तो पेमेंट ना सब काट पीट के 2.5 लाख रुपए मिलेगी, घर में बोल दो ऐसा। लेकिन तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा, घर के बाहर है ना, और तुम बोलना कि लेकिन मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं नहीं करना चाहता, मैं घर ही आ रहा हूँ वापस, ऐसा भी बोल देना तुम। तो उसने ऐसा ही किया, फोन करके घर बोल दिया कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और हमें जम्मू जाना है, कुछ दिन उधर ही रहेंगे ना, ट्रेनिंग है और ऐसे सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आप लोग बुला रहे हैं ना तो हम आ रहे हैं, हम नहीं करेंगे नौकरी वोकरी। अरे बोले मूर्ख, आना नहीं, इधर हाथ पैर तोड़ देंगे तेरे, उधर जाओ नौकरी ज्वाइन करो। तब उसको समझ में आया कि हर रिलेशन न स्वार्थ का है। जब तक व्यक्ति आप किसी के काम आ रहे हो, तब तक वो आपकी केयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, और जैसे ही आप निधंके हो गए बस छोड़ देंगे। और हमें भ्रम रहता है कि इनका तो हमसे बहुत प्रेम है, प्यार है। लास्ट कहानी सुना के, रियल स्टोरी सुना के खत्म करेंगे। काम के ऊपर तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, ये तो ऊपर ऊपर का है, जितनी समझ है उतनी बातें हैं, है तो बहुत गहरी। एक कुमार उधर देखा, जब हम लॉकिंग में थे तो कुमारों के संपर्क में ज्यादा, तो एक कुमार था, अनन्य था, उसको देख के बहुत इंस्पिरेशन होता था, बहुत सेवा करता था, अथक सेवा था, और बहुत मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली से आया था वो, लेकिन बहुत सेवा करता था, बहुत उमंग उत्साह में, और बहुत ख्याति भी प्राप्त करते गए धीरे धीरे, मतलब इस पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ता गया, बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लिया, दुनिया में भी बहुत कुछ अचीव कर लिया, और इधर यज्ञ में भी उसको बहुत, जब सेवा में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ऑटोमेटिक सारी चीजें उसको प्राप्त होती हैं, है ना। अब वो आगे बढ़ गया तो किसी ने उसको देख के, जब इस कुमार जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा आकर्षण भी लोगों को हो जाता है कभी कभी, तो उसको कुमारी ने प्रपोज कर दिया, प्रपोजल रखा कि आप हमारे साथ शादी कर लो, भले जैसा आपको जीवन रहना है ऐसे रहने का, अपन दोनों रहने का, है ना। तो जाज है ना, बोल आगे, सुना है? तो शादी कर लिया। देखो शादी करने के बाद सारी चीजें धीरे धीरे बदलती गई, माया बड़ी सूक्ष्म रूप से आती है। शादी कर लिया, उसको पहले प्रपोजल देने के बाद ये बोला गया कि देखो कब तक ऐसा तुम अकेले जीवन करोगे, कोई तो चाहिए ना साथी, बुजुर्ग हो जाओगे कौन तुम्हारा देखभाल करेगा, केयर टेकर करेगा। सबसे बड़ा भ्रम माया यही डालती है कुमार जीवन में, सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। और भगवान से हमको विमुख करने का एक ही उसके पास जी ब्रह्मास्त्र है, माया के पास ब्रह्मास्त्र एक ही यही है कि वो तुमको भविष्य का दर्शन स्मृति दिलाएगी, भविष्य में कौन देखेगा अगर कुछ हो गया तुमको, कौन करेगा, ये हमारे निश्चय को डोला डायमंड डोल कर देता है। और हमेशा एक तो ऐसा हुआ, उसकी आगे की कहानी सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है, किया शादी करके चला गया, कुछ दिन बाद जिसके साथ उसने शादी की ना, जिसके साथ शादी हुई उसकी, उसको ऐसी बीमारी हुई कि वो बिस्तर से नहीं उठ पाई। और वो कुमार जो गया था ना, वो क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी जॉब थी गवर्नमेंट, अच्छी सैलरी थी, अच्छा घर था, सारी चीजें थी, है ना, इस लालच में भी आके वो चला गया कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, रहेंगे खाएंगे पिएंगे, इधर तो क्या है, यज्ञ में सेवा करना पड़ेगी, कितना क्या करना पड़ता है, रेस्ट नहीं मिलता कभी, उधर रेस्ट करेंगे। आगे देखो भगवान की, उनको दिक्कत नहीं है जिनने भगवान को नहीं जाना, जिनने भगवान को हाथ जान के उसकी शिक्षा लेके पालन के लेके अगर गया, ये भ्रम में न रहे कि भगवान का बनने के बाद और छोड़ के सारी चीजें हो जाए। तो क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई, बेड में पड़ गई, उस कुमार को आज तक सारी देखभाल करनी पड़ती है उसकी, बिस्तर से नहलाने धुलाने से लेके सारी चीजें करनी पड़े, और ऐसी हालत हो गई कि वो किसी को बता नहीं सकता। ये तो बहुत सारे लोगों के अनुभव देखे जीवन में कि जिन्होंने बाबा का हाथ छोड़ के गए हैं, अल्पकाल की चमक धमक देख के उनका हालत खराब हो गया। तो ये तो एक अनुभव है, और जीवन गए थे कुछ और सोच के और कर कुछ और रहे थे, बातें बहुत सारी हैं। इसलिए बाबा का हाथ नहीं छोड़ने का और निर्भय रह के चलने का, और सबसे ज्यादा भय अपन को शरीर आत्मा को शरीर छोड़ने का रहता है। और जब बाबा कहता है कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, युद्ध तो ही वीर का प्रमाण है, आप लड़ो ही नहीं और विजेता बन जाओ मजा ही नहीं रहेगा जीवन में, आप पुरुषार्थ करो नहीं और विजय हो जाओ सक्सेस मजा ही नहीं है, जब तक माया दो चार थपाड़े ना मारे ना तब तक मजा नहीं आएगा, आसानी से सब कुछ मिल जाए तो मजा नहीं है। इसलिए लाख बार भले ही गिर जाओ लेकिन उठने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ो। इसलिए कहते हैं अपने हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, चाहे हार जाओ दुनिया में सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अच्छा, ओम शांति।